ओम शांति। आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन है कि इस सत्र के बाद इस हॉल के पीछे ही टी ब्रेक रखा गया है, तो आप सबके लिए हॉल के बाहर चाय अवेलेबल होगी। और अब मैं इस सत्र में आमंत्रित करना चाहती हूँ इंदौर से आए प्रोफेसर डॉक्टर मानसिंह जी को। सभी लोग तालियों के साथ प्रोफेसर साहब का स्वागत करेंगे। बहनों से भी अनुरोध करूंगी कि भाई साहब का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें और बैच के साथ स्वागत करें। ओम शांति। सत्र की शुरुआत से पहले 2 मिनट हम प्रभु की स्मृति में बैठेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा, वैसे तो भाई साहब नोन है, फिर भी भाई साहब का थोड़ा सा परिचय कराना चाहूंगी। भाई साहब पूर्व कुलपति हैं कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय रायपुर से, और साथ ही आप विभाध्यक्ष मतलब कि डिपार्टमेंट हेड रहे हैं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से, और राष्ट्रीय जनसंचार शिक्षक संघ के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, और मूल्यानुगत मीडिया अभिक्रम समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप रह चुके हैं। इसके अलावा वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस द्वारा मुंबई में आयोजित सम्मान समारोह में डॉक्टर मानसिंह परमार जी को विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली कुलपति की सूची में भी शामिल कर सम्मानित किया गया है। तो इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि आप तो प्रोफेसर और कुलपति, पूर्व कुलपति रह चुके हैं, लेकिन 28 लोगों को आप अपने अंडर PhD भी करा चुके हैं। तो ऐसे हमारे साथ बुद्धिजीवी और पत्रकार जगत में जाने माने डॉक्टर प्रोफेसर मानसिंह जी का हम सभी तालियों से स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आज के हमारे सत्र का विषय है ओवरकमिंग द चैलेंज ऑफ चेंज इन मीडिया, यानी कि मीडिया के बदलाव की चुनौतियों का सामना हम कैसे करें। तो इससे पहले हम सभी सत्र संजय भाई जी का सुन रहे थे, और मेरा भी जो करियर है 20 साल, 2 दशक पुराना है, मैं मीडिया जगत से जुड़ी हूँ और कई सारे TV चैनलों में काम किया है। तो जब मैंने मास कम्युनिकेशन किया था तो मेरे बुक्स में लिखा था, उस वक्त तो हमें इतनी समझ नहीं थी, मीडिया प्रोफेशन जब चुना तो इसलिए चुना था कि इससे कुछ हम समाज का कुछ कल्याण कर सकेंगे। तो उस वक्त हमारी किताबों में भाई साहब लिखा हुआ था, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हम भाई जी का, मैं संजय भाई जी को सुन रही थी कि आजकल सत्य और तथ्य सभी गढ़े जा रहे हैं, तो उसमें लिखा था कि जो पूर्ण सत्य है अखबारों में 100% जो सत्य खबर होती है वो होती है स्पोर्ट्स न्यूज, क्योंकि अगर सचिन ने 6 मारा है तो आप 6 ही लिखेंगे, आप उसको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने चौका लगाया। और जो अर्ध सत्य होता है वो मौसम की जानकारी होती है, क्योंकि वो प्रिडिक्शन है कि बारिश होगी तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और उसमें लिखा हुआ था फिर बाद में मेरी किताबों में मास्कॉम की, कि बाकी सब जो अखबार में छपता है वो सब असत्य होता है। तो पहला क्वेश्चन मेरा इसी पर होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है आजकल सत्यता की। तो इस सत्यता की बिना विश्वसनीयता के मीडिया कैसे सरवाइव करे?
सबसे पहले तो जो विषय है मीडिया में बदलाव की चुनौती सामना, देखिए बदलाव या चेंज प्रकृति का नियम है। बदलाव होना सभी क्षेत्रों में हुआ है, समाज में भी हुआ है, अन्य क्षेत्रों में भी हुआ है, और पत्रकारिता या मीडिया के क्षेत्र में भी बदलाव आया है। आजादी के समय हमारे सामने एक लक्ष्य था, एक एम था, एक उद्देश्य था कि हमें आजादी प्राप्त करना है, और उस उद्देश्य को लेकर के पत्रकारिता की गई, और उस समय कि जो पत्रकार थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और उन्होंने जो लिखा, जो प्रयास किए, उनके द्वारा जो कुछ भी त्याग बलिदान किया गया वो फलीभूत हुआ स्वतंत्रता के रूप में। और आजादी के बाद फिर एक मुख्य बात ये रही कि देश में पत्रकारिता क्या करें। तो देश को एक विकास की ओर ले जाने का काम शुरू हुआ। ऐसे धीरे धीरे बदलाव की ओर हम बढ़े, परंतु मुख्य बदलाव आया जब मीडिया प्रोफेशन से या मिशन से व्यवसाय की ओर बढ़ा। व्यवसाय की ओर बढ़ना अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हम जो मीडिया के लोग हैं वो कोई दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या बिजनेस है उसमें और हम में थोड़ा अंतर है, क्योंकि हमें सामाजिक सरोकार, देश, राष्ट्र, लोगों में जागरूकता, ये सारी चीजें हमारे जिम्मे हैं। और चौथा स्तंभ भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में ना हो, परंतु एक जिम्मेदारी तो हमारे कंधों पर चौथा स्तंभ की है ही। अब जो बहन ने पूछा कि विश्वसनीयता का संकट आज के समय में बहुत ज्यादा है, यूं कह सकते हैं, और विश्वसनीयता पत्रकारिता की कम हो रही है लोगों में, समाज में, इस पर हमें आत्मावलोकन कहिए, चिंतन मनन किए करना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, और जो ट्रुथ है उसको हम क्यों नहीं समाज के सामने, पाठकों के सामने, दर्शकों के सामने क्यों नहीं रख पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय तो है, परंतु जैसे जैसे मेरा ऐसा मानना है दूसरे क्षेत्रों में भी परिवर्तन हुआ है, पत्रकारिता में भी हुआ है, पर ये तो हमको किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया कि हम ऐसी खबरों को, आप देखिए बहुत सारे, खास करके मैं यहाँ प्रिंट मीडिया, तो मुझे ऐसा लगता है आज भी जिम्मेदारी या जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी को बहुत जिम्मेदारी से निभा रहा है, परंतु कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों पर बड़ा ब्रेकिंग बता रहे हैं और थोड़ी देर बाद ब्रेकिंग बदल जाती है। एक दिन एक टीवी चैनल ने जो सवेरे से शुरू किया कि आज राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में मीटिंग होने वाली है, हो गई, उसके बारे में भी बाद में भी होने वाली है, निर्णय होने वाला, दिन भर ब्रेकिंग करके वो न्यूज चलाई। 11-12 बजे के करीब वो मीटिंग खत्म हुई, 5 बजे तक बता रहा अभी मीटिंग खत्म हुई है। तो ये क्या है, दिन भर खबरों को रबर जैसे खींचना, ये बहुत ही ठीक नहीं है। और तीसरा, सोशल मीडिया के भी जो विश्वसनीयता है उसके कारण भी कम हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया तो लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहिए या वाणी दी है लोगों को, पर बहुत सारे उसके नकारात्मक पहलू भी हैं, आज हम उस पर चर्चा ना करें, पर विश्वसनीयता का संकट मीडिया के ऊपर है, उसे हमें कैसे टेंगे, उसका सामना कैसे करेंगे, ये हमें ही तय करना है।
बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि कैसे ब्रेकिंग, तो मैं भी एक चैनल में थी, तब हमने एक छत्तीसगढ़ के जोगी जी जो सीएम थे उन्हें भी ब्रेकिंग चला के इनका एक्सीडेंट हुआ था और उनकी मृत्यु घोषित कर दी थी। अभी मुझे आपने जब बोला तब ये याद आया, उसके लिए फिर चैनल को कई दिनों तक चलाना पड़ा कि वो खबर उसके लिए, तो इसके लिए कोई पनिशमेंट भी नहीं है। इस तरह की कोई बॉडी होना चाहिए कि जिससे मीडिया के फैक्ट चेक हो सके, जो वो खबर चला रहे हैं, जो कंटेंट दे रहे हैं, तो अगर वो कुछ गलत चलाते हैं तो क्या इस पर कुछ ऐसी बॉडी बनाना चाहिए, जैसे बार काउंसिल है तो जे या मेडिकल काउंसिल है, तो हमारे मीडिया के लिए क्या इस तरह की कोई काउंसिल का गठन होना चाहिए जो फैक्ट चेक के लिए काम करे और उन्हें नियंत्रित करे।
देखिए, फैक्ट चेक की जो आपने बात की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कुछ, मैंने पिछले साल ही एक आईटी कानून में बदलाव किया था और फैक्ट चेक यूनिट के लिए, पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। अब आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, मैं उसकी हमेशा वकालत करता रहा हूं और बहुत सारे लोग हमारे नहीं मानते कि ऐसा होना चाहिए, और मैंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस बात को उठाया है, और आप जो हॉल में बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर लोग मुझसे सहमत होंगे। जैसा बहन ने कहा कि देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, वो लॉ एजुकेशन को भी रेगुलेट करती है। कोई वकील अगर गलत आचरण करता है तो उसकी सनद रद्द कर दी जाती है, वो कोर्ट में खड़ा नहीं हो सकता है। कोई कॉलेज ऐसा नहीं चलेगा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नियम बनाए हैं उसके खिलाफ जाए। इसी तरह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, कोई डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकता बिना डिग्री के। चलिए डिग्री को छोड़िए, बिना ऑपरेशन थिएटर में जाए बिना डॉक्टर बन जाएगा। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करती है, इसका नियमन करती है, मेडिकल कॉलेज भी देखती है, डॉक्टरों का आचरण के ऊपर भी एक्शन ले सकती है। ये दो उदाहरण मैं देता हूं, इसलिए कोई ये कहता है इसकी जरूरत नहीं है। हमारे देश में प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो हमारे प्रिंट मीडिया का नियमन करती है। एक उसमें पत्रकार लोग ही ज्यादा उसके मेंबर है, और एक व्यवस्थित रूप से वो प्रिंट मीडिया से संपर्क संबंध, उनके उन्नयन, पत्रकारों की स्वतंत्रता के लिए काम करती है। परंतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई ऐसा नियमन नहीं है। एनबीए या ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन बना लिया, आप ही उसके मेंबर, आप ही उसके जज, आप ही उसके, अगर कुछ हो जाता है, कुछ खबरें ऐसी दे दी जाती जिससे कुछ रोक लगाना चाहिए, तो उनके ऊपर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई नियमन, कोई कंट्रोल, मैं तो कंट्रोल शब्द को अच्छा नहीं समझता हूं, मैं नियमन कहता हूं, बल्कि स्वनियमन कहता हूं। तीसरा, हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो भस्मासुर की तरह है, बहुत अच्छी बातें भी, बहुत खराब बातें भी हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि सोशल मीडिया पर गार्बेज भरा हुआ है, आपको अपने काम की चीज उसमें से निकालना पड़ती है। तो मेरा सोच ये है कि इस देश में मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया बनना चाहिए। दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बात है, फिल्मों के ऊपर भी नियमन है, फिल्म सेंसर बोर्ड है, परंतु इधर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर नहीं है। तो एक पूरे देश में एक मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया बने, और मैं तो ये भी कहता हूं कि उसका जो चेयरमैन है, उसका चेयरपर्सन है, उसका अध्यक्ष है, पत्रकारिता के फील्ड के किसी अच्छे शीर्ष व्यक्ति को आप बनाइए। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी उसका चेयरमैन बनाने की जरूरत नहीं, आप पत्रकारिता के फील्ड को बनाइए। बाकी मेंबर्स भी आप सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लीजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को, सूचना प्रसारण मंत्रालय को इस दिशा में प्रयास करना। अलग अलग यूनिट हो सकती है, विज्ञापन के लिए अलग एक यूनिट हो सकती है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऐसे प्रावधान बनाए जाए, ऐसी आचार संहिता, कोड ऑफ एथिक्स, जो हम नैतिकता की बात करते हैं, ऐसी तैयारी हो कि पूरे देश में एक स्वनियमन का एक आदर्श प्रस्तुत हो पूरे विश्व में। क्योंकि हम सभी दिशा में बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की ओर सब बातें कर रहे हैं, परंतु मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया, आज मैं बहुत बेबाकी से कहता हूं, ना तो सरकार चाहती है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बने। क्यों नहीं चाहती वो? क्योंकि वो पत्रकारों से, क्या कहें, मतलब बहुत खराब शब्दों में, पंगा लेना नहीं चाहती है। दूसरा, पत्रकार भी नहीं चाहते हैं कि हम पर नियंत्रण हो। अब देखिए, यहां त्रिपाठी जी बैठे हैं, एक टीवी चैनल पर दिन भर 10, 11, 12 घंटे जो खबर चलती है, इनके अखबार में दूसरे दिन एक कॉलम में सिमट जाती है वो खबर, एक कॉलम में। और मतलब जो मर्जी हो टीआरपी के चक्कर में वो चलाया जा रहा है, जो मतलब जिसको हम ऑप्शनिटी कहते हैं उसका भी ख्याल नहीं रखा जाता है। तो जैसा अभी बातचीत हुई थी कि अश्लीलता मुक्त पत्रकारिता होनी चाहिए, मैं तो कहता हूं कि सोशल मीडिया पर ऑप्शनिटी बहुत है, उस पर कहीं नियमन होना चाहिए। तो देश में ऐसा कानून बनना चाहिए। मैं सूचना प्रसारण मंत्री, कम से कम 3 या 4 सूचना प्रसारण मंत्रियों से मेरी इस संबंध में चर्चाएं भी हुई, उनको बात भी समझ में आई, परंतु उसमें एक कदम भी आगे बढ़ने का प्रयास नहीं हुआ। और खास करके आपने जो चर्चा की मीडिया शिक्षा की, उस पर भी नियमन आवश्यक है। बहुत छोटे छोटे दो दो कमरे तीन तीन कमरे में मीडिया के इंस्टीट्यूट शुरू हो गए हैं, ना टीचर है पढ़ाने के लिए, ना स्टूडियो है, ना अखबार है, बिना हॉस्पिटल के डॉक्टर तैयार कर रहे हैं। इस पर भी कहीं ना कहीं जितना टीवी चैनल है उनके सबके अपने स्कूल चल रहे हैं
जी। और कुछ तो पत्रकार पहले तो कहते हैं कि हमारे पास डिग्री, कुछ लोग तो बिना डिग्री के ही इस पत्रकारिता प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। तो मीडिया शिक्षा भी इसके लिए बेस हमको सुधारना पड़ेगा। अगर हमें मीडिया के चैलेंज या इस तरीके के सोशल मीडिया के इवन यहाँ तक भी हमें सोचना चाहिए कि क्या सोशल मीडिया पर जो लोग अपना कंटेंट दे रहे हैं तो उसके लिए भी कोई शिक्षा या इसके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन हमें, मुझे लगता है, तय करनी चाहिए।
देखिए, अभी ये विषय हमारा है परिवर्तन का, बदलाव का। सब दूर बदलाव हो रहा है। जब हमारे जागरण के संपादक त्रिपाठी जी पत्रकार बने, उस समय पत्रकारिता की शिक्षा या तो थी नहीं या तो आवश्यक नहीं थी। मैं इसका पक्षधर हूं कि जो बड़े बड़े पत्रकार हुए, किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। परंतु जो वर्तमान समय है उसमें मीडिया शिक्षा, मैं एक शिक्षक हूं, मीडिया शिक्षक रहा हूं और पत्रकारिता भी की है, मैं ऐसा मानता हूं कि मीडिया शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। बेसिक नॉलेज सभी को पत्रकारिता का होना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया में काम करे, चाहे वो समाचार पत्र में काम करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो बिना प्रशिक्षण के पत्रकारिता करना मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, आपको उसको समझ होना चाहिए। अब एक ही व्यक्ति, अभी तो कैमरामैन की जरूरत भी नहीं, कैमरा लगा हुआ यहां बैठ के सारे कंट्रोल आपके हाथ में, आप समाचार पढ़ दीजिए, समाचार बता दीजिए, सारे विजुअल दिखा दीजिए, कोई दूसरे व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है। तो आप टेक्नोलॉजी नहीं समझेंगे तो कैसे पत्रकारिता करेंगे। ऐसे ही जो अभी फॉरवर्ड करने की बात हो रही थी, तो सोशल मीडिया पर सरकार भी बहुत इस मामले में सोच रही है। और देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति तक फेक न्यूज से परेशान थे, उन्होंने कई बार अपना दुख मीडिया के सामने व्यक्त किया। मोदी जी ने भी फेक न्यूज की थोड़ी सी को कैसे वो किया जाए, कम किया जाए, तो उन्होंने भी चर्चा की। तो सोशल मीडिया के लिए मैं, यहाँ बहुत सारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए बैठे हुए हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि उनको बेसिक नॉलेज या बेसिक ट्रेनिंग या पत्रकारिता की बेसिक समझ कि समाचार और सूचना में क्या अंतर है, आपको क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कितने शब्दों में लिखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, शब्द विकास भी कर सकता है और शब्द विनाश भी कर सकता है। आपके एक गलत पोस्ट से दंगे भड़ा सकते हैं, देश में अराजकता पैदा हो सकती है, शहर में अशांति फैल सकती है। तो इसका ध्यान रखना भी, सोशल मीडिया के हमारे साथियों को ध्यान रखना चाहिए इस बात का।
जी, एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें लगता है कि जिस तरीके से हम थोड़े समय से देख रहे हैं कि क्राइम खबरें कम से कम अखबारों में या टीवी चैनलों में 80% होती है, उसके अलावा जो खबरें होती हैं ज्यादातर पॉलिटिकल खबरें होती हैं। ऐसे में सामाजिक मुद्दे और आम जनता के मुद्दे या दूसरी खबरें होती हैं वो किल हो जाती हैं, क्योंकि है, मैं भी जब न्यूज रूम में थी तो अच्छी अच्छी खबरें आती थी और उसको कहते थे कि नहीं आज तो, क्योंकि टीवी चैनल्स में तो डेडलाइन होती है, तो कहते थे नहीं आज तो ये खबरें, और जब वो सेकेंड डे उन खबरों को फिर जैसे कहते हैं डस्टबिन में डाल दिया जाता था। तो ऐसे में हम बैलेंस कैसे बना के चलें?
ऐसा कहा जाता है कि मीडिया समाज का दर्पण है, जो मीडिया में जो कुछ हो रहा है दिखाया, हम वही दिखाते हैं। मैं यहां एक उदाहरण देना चाहता हूं, वो समाचार का नहीं है परंतु ये पाठक या दर्शक की पसंद नापसंद का है। जब रामायण और महाभारत का प्रसारण होता था तो आप सोचिए पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सन्नाटा छाया रहता था, सारे लोग टीवी के सामने बैठ करके उसको देखते थे। तो क्या अच्छे कंटेंट को दर्शक नहीं देखेंगे? दर्शक भी अच्छा कंटेंट, परंतु टीआरपी के चक्कर में, ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में, समाचार पत्र का सर्कुलेशन बढ़ाने के चक्कर में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में विज्ञापन मिले, इस चक्कर में हम राजनीतिक खबरों को और खास करके आपराधिक खबरों को बहुत महत्व देते हैं, जो कि थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए, संतुलन बनाना चाहिए और समाज के विकास। आप सोचिए, यहाँ का 60-65-70% जो भारत का रहने वाला व्यक्ति वो गांव में बसता है, शहरों में हम बहुत कम लोग हैं, मुझे लगता 20-25-30% जितना भी मान लीजिए। तो आप बताइए, कौन से समाचार पत्र में गांव की कितनी खबर होती है? वहां 10 लोग मर जाए तो खबर नहीं छापते हैं, और शहर में किसी नेता की कुछ भैंस चोरी हो जाए तो पूरा मीडिया उसके पीछे पड़ जाता है। तो ये फर्क है, गांव का विकास हो रहा है और होने की आवश्यकता है। कृषि उन्नत हुई है और उन्नत हो सकती है, या जैविक खेती को हम कैसे बढ़े, तो सामाजिक सरोकार, ग्रामीण विकास, समाज का उत्थान, राष्ट्र का विकास, ये मुद्दे भी कहीं न कहीं शामिल करना चाहिए। करता है मीडिया, और ऐसा नहीं कि नहीं करता है, परंतु इस पर और सोचने की, इसमें और सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि पूरे समाज में अपराध ही एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो लोग पढ़ना या सुनना या देखना चाहते हैं, अच्छी बातों को भी, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत अभी कुछ दिनों से हुई है। एक अखबार ने सोमवार को नेगेटिव न्यूज नहीं छापते, वो केवल सकारात्मक समाचार ही देते हैं। कुछ टीवी चैनलों ने भी कुछ अच्छी शुरुआत की है, कुछ कार्यक्रम ऐसे बनाए हैं जो कि सकारात्मक सोच के साथ
है। आज तक चैनल ने भी अपने तेज चैनल का नाम गुड न्यूज रख दिया है
क्या?
आज तक चैनल ने भी तेज, उनका जो चैनल है उसको चेंज करके गुड न्यूज शुरू किया है।
हाँ, उन्होंने एक अलग चैनल ही शुरू किया है जिस पर केवल पॉजिटिव खबरें देते हैं, वो केवल विकास की खबरें देते हैं, केवल अच्छे मनोरंजन की। तो देखिए, ये बदलाव तो आया है मीडिया में भी, मीडिया के लोगों को भी ये सोचने को मजबूर होना पड़ा है कि कैसे समाज में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता, हम पत्रकार भी, आप भी, दूसरे लोग भी, सब है तो भारत के नागरिक, हमारी जिम्मेदारी बराबर है, पत्रकारों की भी उतनी जिम्मेदारी जितने दूसरे लोगों की है। तो समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में, व्यक्ति के विकास में मीडिया भागीदार क्यों ना बने, क्योंकि मीडिया का तो बहुत जबरदस्त, मानवता के विकास में कहिए, बदलाव में कहिए, सभी क्षेत्रों में मीडिया का बहुत ही सकारात्मक सोच रहा है और आगे भी रहेगा। मीडिया में अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे अच्छे लोगों की संख्या ठीक है, और वो अच्छे लोगों के कारण ही मीडिया की विश्वसनीयता जो घट रही है उनके कारण से एक समय रुकी हुई है, विश्वसनीयता बढ़ रही है।
अच्छा, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम बात करते सत्यता की, विश्वसनीयता बढ़ रही है, या हम पॉजिटिव खबरें दें, लेकिन जो हमारा ज्यादातर मीडिया है वो उद्योगपतियों के हाथों में है, चाहे अखबार हो, उनके भी मालिक जो हैं वो उद्योगपति हैं, या फिर जो भी टीवी चैनल हैं वो ज्यादातर उद्योगपतियों या कॉरपोरेट के हाथ में। ऐसे में इस कंटेंट को या फिर किसी राजनीतिक विचारधारा से जब कोई उद्योगपति उससे जुड़ा होता है तो उसी तरह के कंटेंट को दिया जाता है। तो ऐसे में हम सकारात्मक पत्रकारिता और साथ ही सत्यता को कैसे हम लेकर चलें?
देखिए, मैं इंदौर शहर से हूँ और इंदौर शहर मध्य प्रदेश की, या यूं कहें देश की, हिंदी पत्रकारिता की राजधानी रही है। राजेंद्र माथुर नई दुनिया के संपादक हुआ करते थे। एक बार मैं दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई, उनके ऑफिस में। ये जो आपने बात कही वो दर्द उनका उस बात में झलका उस समय जब मैं गया था, कि जो उद्योगपति जो मालिक हैं वो पूरी तरह से दूसरा व्यवसाय भी करते हैं, पत्रकारिता तो उनका एक साइड बिजनेस। तो राजेंद्र माथुर जी ने कहा कि परमार जी, अभी मैं जो एडिटोरियल में लिखना चाहता हूं वो अब ऐसा लगता है कि मेरे मालिक का कहीं ना कहीं उसमें दखल की शुरुआत हो गई है। ये बात उन्होंने बड़ी गंभीरता से उस दिन बैठ करके की थी। तो अब ये तो ऐसा है, ऐसा सवाल है कि उद्योगपति चाहेगा कि उसकी आर्थिक आय बढ़े, उद्योगपति चाहेगा कि उसके दूसरे जो बिजनेस साइड उनमें भी इस हमारे अखबार का, चैनल का के कारण से लाभ मिले। संपादक नाम की जो संस्था है वो करीब करीब समाप्त होने की कगार पर है, यूं कह लीजिए। आज कोई सा भी समाचार पत्र का संपादक अपनी मर्जी से या न्यूज़पेपर की जो पॉलिसी है, जो कंटेंट के संबंध में पॉलिसी है, उसके खिलाफ नहीं लिख सकता। एक विचारधारा से, एक सोच के साथ जुड़ा हुआ है तो वो उसी तरह के कंटेंट, उसी तरह का एडिटोरियल, उसी तरह का फीचर, उसी तरह का लेख, उसी तरह का समाचार उसमें समाहित होते हैं। देखिए, एक न्यूज चैनल था एनडीटीवी। एनडीटीवी थोड़ा सा कोई भी सरकार हो उसके लिए,
भाई जी हम चाहेंगे कि आप इस तरह
नाम खैर, तो वो चैनल भी अब नहीं, मतलब क्या कहें, उद्योगपति ने खरीद लिया उसको, यूं कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के विचारधारा की या जो एक अलग तरह की जो पत्रकारिता थी आजादी के समय, उसमें बहुत बदलाव आया है और निश्चित रूप से मालिकों के हितों को, उनके आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर, उसकी विचारधारा के हितों को ध्यान में रखकर ही अखबार, न्यूज चैनल, रेडियो चैनल चलाए जा रहे हैं, यूं कह सकते हैं। परंतु यहां पर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा संपादक अपनी लेखनी से, अपने शब्दों के माध्यम से समाज के विकास की बात भी कर सकता है, अगर वो इस तरह का सोच रखता है, मालिक को भी समझा सकता है कि भाई ये खबर, ये संपादकीय बहुत आवश्यक है। अब तो संपादकीय रहा कहां, देखिए अखबारों में पहले संपादकीय पेज होता था, उस पर एक दो एडिटोरियल, एक दो अच्छा आर्टिकल, दूसरी चीजें पत्र संपादक के नाम होते थे, वो करीब करीब, अभी तो एक कॉलम का संपादकीय का जमाना आ गया है। संपादकीय पृष्ठ पर विज्ञापन नहीं देते थे, उसकी गरिमा थी, वो सब अब संपादकीय पृष्ठों पर खूब विज्ञापन आने लगे हैं। अभी पहले पेज पर कभी विज्ञापन नहीं देते थे, पहले पेज पर खबरें देते थे। आजकल पहला विज्ञापन नेता के जन्मदिन का होता है, दूसरा पेज उसके बेटे का जन्मदिन का होता है, तीसरा पेज प्रथम पृष्ठ होता है। तो ये बदलाव आया है, अब वो इसको आप, क्योंकि जिसने पैसा लगाया है उसकी मर्जी तो चलेगी।
तो मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या अखबारों को, टीवी चैनल्स, जो कि कई बारी जो हमारे विज्ञापन, उनका एक सोर्स ऑफ इनकम ओनली विज्ञापन ही है, तो वही विज्ञापन ही उन्हें नियंत्रित भी करते हैं कई बार, तो क्या उन्हें ऐसे कुछ और सोर्स सर्च करने पड़ेंगे अपने अखबारों को चलाने के लिए या टीवी चैनलों को, जो जिन्हें नियंत्रण अखबार जिस तरीके विज्ञापन के थ्रू भी नियंत्रण होता है या एडवर्टाइजमेंट कंपनियां नियंत्रण करती, तो कुछ और ऐसा हमें सर्च करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है कि सिर्फ अखबार में जो विज्ञापन छपते हैं उसकी वजह से कई बारी कंटेंट को नियंत्रित किया जाता है।
देखिए, समाचार पत्र का लेआउट तैयार होता है तो पहले विज्ञापनों को फिट किया जाता है, बची हुई जगह में समाचार दिए जाता है, और बिना विज्ञापन के अखबार चल नहीं सकता है। जिस अखबार की कीमत 15 से 20 रुपए होती है वो आपको 2 या 3 रुपए में घर पर मिलता है, तो कहां से आएगा पैसा? ये सवाल कई बार उठाए। मेरा ऐसा मानना था कि भैया विज्ञापन तो जरूरी है, क्योंकि संपादक को अगर अच्छी तनख्वाह देना है, रिपोर्टर को अच्छा पैसा देना है, क्योंकि रिपोर्टर और संपादक की भी इच्छा होती है कि उसका बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, बहुत अच्छी सुविधाएं मिले, उसको क्यों अभावों में जीना पड़े। तो जब तक मालिक के पास अच्छा पैसा नहीं आएगा तब तक वो अपने जो रिपोर्टर सब एडिटर है उनको पैसा नहीं दे पाएगा। दूसरा ये है कि जब नहीं दे पाएगा तो फिर शुरुआत हो जाती है दूसरी पत्रकारिता की,
करप्शन की, पित पत्रकारिता जिसे हम कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। और साथ में एक और चैलेंज लगता है कि आज जब कॉरपोरेट के हाथ में मीडिया जगत आ चुका है ऑलमोस्ट, तो ऐसे में पत्रकारों पे बड़ा प्रेशर होता है। एक तो टाइमलाइन का भी प्रेशर होता है, साथ में उन्हें अपने जॉब की इनसिक्योरिटी भी होती है, तो ऐसे में फिर स्वस्थ पत्रकारिता कैसे हो पाएगी?
देखिए, यहाँ बहुत सारे पत्रकार बैठे हुए हैं। एक आपके संबंध में श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम है, मेरा ऐसा, मैं कई बार पत्रकारों के बीच में प्रेस क्लब में गया, मैं ये सवाल करता था कि भाई कितने लोगों को मालूम है कि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में क्या प्रावधान है आपके संबंध में। अगर पत्रकारों की स्थिति अच्छी होगी तो आप पत्रकारिता, प्रेस की स्वतंत्रता, अच्छे सकारात्मक समाचार की भी उम्मीद करेंगे। तो कहीं कॉरपोरेट के हाउस के हाथ में अगर मीडिया है, सारी चीजें हैं, पर पत्रकारों की दशा और दिशा भी उन्नत होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, तो देश में एक अच्छी पत्रकारिता होगी और पत्रकारों में अपने मालिक के खिलाफ खड़े होने की इच्छा शक्ति भी होना चाहिए। क्योंकि प्रेस काउंसिल जो श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम है उसमें बहुत अच्छे प्रावधान दिए गए हैं, उसके द्वारा मालिक को भी थोड़ा सा रास्ते पर लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको जब चाहे तब भगा देगा वो, क्योंकि श्रमजीवी पत्रकार कानून सारे अखबारों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है। उसमें कुछ संशोधन होते हैं, हो सकते हैं सरकार को उसमें श्रमजीवी पत्रकारिता से जुड़े सारे पत्रकार मिलकर के उस कानून को इम्प्रूव कर सकते हैं और जो कभी भी निकाल दें पत्रकार को, एक खबर अगर उनके हिसाब से नहीं लगाई तो बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये बंद होगी, उनके प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था, उनके पेंशन की व्यवस्था, उनके भविष्य की व्यवस्था, उनके बच्चों के एजुकेशन के संबंध में कोई अच्छा निर्णय हो तो ये बहुत आवश्यक है। सरकारी नौकरी में तो आदमी निश्चिंत हो जाता है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उसको खूब अच्छी पेंशन मिलती है, कई लोगों की तनख्वाह नहीं होती उससे ज्यादा पेंशन मिलती है। और जब पत्रकार रिटायर होता है तो उसके सामने संकट होता है कि वो आगे करे क्या, अखबार से जब चला गया तो फिर करे क्या, ये भी एक समस्या है। तो पत्रकारों जो फील्ड में काम करते हैं उनके उन्नयन के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति के लिए, उनकी और नौकरी के प्रोटेक्शन के लिए कानून बनना चाहिए और सख्ती से लागू होना चाहिए और श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में कुछ संशोधनों के साथ उसको और प्रभावी बनाया जा सकता है।
जी, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो युवाओं को मीडिया गाइड करता है, चाहे सोशल मीडिया, हम देखते हैं आजकल मोबाइल जर्नलिज्म बहुत ज्यादा चल गया है, तो ऐसे में युवा बहुत दिशा भ्रमित है। और जैसे आपने कहा कि मीडिया ही जब दिशाहीन हो चुका है, उसको एम ऑब्जेक्ट अपना क्लियर नहीं है, जब आजादी के समय मीडिया के पास एक एम ऑब्जेक्ट था, तो युवाओं को हम कैसे भ्रमित ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं या मीडिया क्या कर सकता है?
देखिए, आज का युवा बहुत समझदार हो गया है, लिटरेट भी है। हम जिस उम्र में दो सेंटेंस नहीं बोल पाते थे, उस जमाने में आज का युवा मंच पर खड़ा होकर के बहुत अच्छे से अपनी बात को रख पाता है। तो युवा जागरूक है, परंतु एक बात जरूर है आप जो कह रहे हैं, पहले फिल्में बनती थी तो कहीं न कहीं उसमें एक मैसेज होता था, एक संदेश होता था समाज सुधार का। हमारे यहाँ अंतर जाति विवाह की शुरुआत भी फिल्मों के माध्यम से हुई है, नहीं तो पहले नहीं होता था इतना ज्यादा। युवाओं के लिए मीडिया में कुछ अच्छा कंटेंट, कुछ अच्छा एक आध पेज आता है, कुछ अखबारों में युवाओं के लिए एक पेज दिया जाता है, युवाओं के एजुकेशन के ऊपर भी कई अखबारों में पूरा का पूरा पेज दिया जाता है, उनके कैरियर गाइडेंस के लिए भी आजकल बहुत अखबारों में अच्छा कंटेंट दिया जाता है। पर सबसे बड़ा डर जो है वो है सोशल मीडिया का। कई देशों ने, फिनलैंड की बात हो रही थी और दूसरे देशों में, स्कूलों में मोबाइल को बंद कर दिया है बच्चों के लिए। इस एज तक अगर बच्चों ने मोबाइल उपयोग किया तो उनके माँ बाप को पनिश किया जाएगा। भारत में भी ऐसा होना चाहिए कि एक तो बच्चों को एक उम्र के बाद मोबाइल देना चाहिए और मोबाइल में क्या वो देखते हैं, देखिए मोबाइल का स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत खराब असर पड़ता है, आंखें खराब हो रही है बच्चों की, कमर झुकी हुई रहती है। और जो मोबाइल युवा ऐसे दबा करके, आजकल तो ब्लूटूथ और सब आ गया, नहीं तो ऐसे यहां दबाते हैं, उनके गर्दन टेढ़ी हो जाती है, बाइक पे चलते हैं वो दबा लेते हैं। तो सोशल मीडिया की अभी जो हम बात कर रहे थे, अभी जो लोग बैठे हैं यूट्यूबर और दूसरे लोग, उनको अच्छा नहीं लगेगा, परंतु इसमें कहीं कानून बनना चाहिए। सरकार ने बनाया भी है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक भी लगा दी थी, और भी कुछ चीजें हैं जो जिन पर विचार होना चाहिए, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे और दूसरे, वहां पर सरकार को ऐसे कंटेंट पर रोक लगाना चाहिए जो युवाओं को भ्रमित कर रहा है, युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहा है और अश्लील सामग्री सोशल मीडिया पर ना पोस्ट की जाए और युवाओं को के लिए कुछ न कुछ अच्छा सोच मीडिया को करना चाहिए, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम उन युवाओं पर है, और हमारा युवा अगर दिग्भ्रमित हो गया तो देश कहां जाएगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती।
एक सबसे बड़ा चैलेंज और नजर आता है, वो है टेक्नोलॉजी। पुराने थर्रे वाली जो पत्रकारिता है वो दिन पे दिन चेंज होते जा रही है। जहां अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो कई जो चैनल्स हैं अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि 40 प्लस एज वाले पत्रकारों को वो अपने यहां नहीं रखेंगे। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी भी ये है कि जो पुराने लोग हैं वो डिजिटल या नई नई आधुनिक चीजें सीखने में नहीं, तो ऐसे में जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, मीडिया इंस्टीट्यूट है, उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, या इस बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। ये चुनौती भी है कि जैसे आप, क्योंकि आप उस वक्त जब 40 प्लस हो जाते हैं तो आप अपना प्रोफेशन चेंज भी नहीं कर सकते।
देखिए, टेक्नोलॉजी तो अभी हम बात कर रहे हैं और कल नई टेक्नोलॉजी, नया कुछ आविष्कार, कुछ नई बातें आती हैं। हमें अपडेट होने की जरूरत है, हमें समय के साथ, समय की टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ना पड़ेगा। जब मैं अखबार में काम करता था उस जमाने में संपादक को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, वो एक ऑपरेटर को बिठाता था, फिर वो बोलता था, फिर वो टाइप करता था। रिपोर्टर दिन भर शहर में घूम करके खबरें लाता था, फिर वो ऑपरेटर के साथ बैठता था, फिर वो उसको टाइप करवाता था। आजकल ऐसे संपादक हैं, ऐसे रिपोर्टर हैं जो सब काम खुद कर लेते हैं, स्वयं कर लेते हैं। मैं जब आज से मेरे ख्याल से 15 साल हो गए होंगे, एक PhD करवाई थी मैंने मीडिया कन्वर्जेंस के ऊपर। उस समय मीडिया में कन्वर्जेंस शब्द को लोग समझते नहीं थे कि कन्वर्जेंस है क्या। तो आज का समय उससे भी आगे हो गया, मीडिया कन्वर्जेंस। आज एक व्यक्ति में टीवी चैनल में वो कैमरा भी चला ले, वो बोल भी ले, वो आकर के टीवी चैनल पर समाचार को लोगों को सुना भी दे। सारी जो कन्वर्जेंस, मतलब एक व्यक्ति में, जैसे हमारा मोबाइल है, इसमें फोटो भी निकल जाता है, इसमें मैसेज भी भेज दिया जाता है, इसमें और भी बहुत सारे काम एक ही में हो सकते हैं। तो आज का समय ऐसा है कि मीडिया कन्वर्जेंस का समय है, और हमें टेक्नोलॉजी के करीब आना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से भाग नहीं सकते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग और उसका प्रशिक्षण, इसके लिए जो मीडिया संस्थान है, जो नए पत्रकार आने वाले हैं, हर मीडिया संस्थान में अच्छी मीडिया लैब होना चाहिए, कंप्यूटर लैब होना चाहिए बहुत अच्छी, बहुत अच्छा कैमरा होना चाहिए, बहुत अच्छा स्टूडियो होना चाहिए। आजकल तो बहुत बड़े स्टूडियो की जरूरत नहीं है, आप ग्रीन वो लगा दीजिए स्क्रीन और पूरा दुनिया को दिखा दीजिए उस पर। तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और सोशल मीडिया तो हमारा टेक्नोलॉजी है। तो इसको हमें हमारे प्रशिक्षण में भी, समाचार पत्रों में भी, टीवी चैनलों में भी इसको आत्मसात करना पड़ेगा, सीखना होगा इसको, अपने डेली के कामों में उसका इस्तेमाल शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि आपको कैमरा चलाना नहीं आता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करना आज के समय में बहुत मुश्किल है, रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल है। आप कैमरामैन को बुलाएंगे तब तक इवेंट ही खत्म हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आपको बोलना भी आता हो, आपको लिखना भी आता हो, आपको कैमरा चलाना भी आता हो, आपको एडिटिंग करना भी आता हो, तो आप टेक्नोलॉजी के करीब आकर के हमें आगे बढ़ना होगा। अभी आज सारे डिजिटल एडिशन हो गए सारे न्यूज़पेपर के, तो सब लोग, हमारे युवा पीढ़ी तो उसी पर पढ़ती है। अभी जो पढ़ने की प्रवृत्ति किताब को भी क्या करता गई है, तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी को, तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा, यूं कह सकते हैं।
एक और बड़ा संकट है, वो है भाषा का, कि वेबसाइट है, नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो ऐसी भाषाओं का या एकदम टपोरी लैंग्वेज यूज करते हैं और वो बहुत पॉपुलर हैं आज के टाइम में, तो इस तरीके की भाषा और इस तरीके का जो कंटेंट क्रिएट करा है और जो पॉपुलरिटी भी हो रही है सोशल मीडिया पे, तो किस तरह की भाषा, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, या हम मिक्स, अब हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं लिखी जाती, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो मिक्स ही लैंग्वेज लिखी जाती है, उर्दू इंग्लिश सारी, तो ये भाषा को हम कैसे सुधारा जाए मीडिया के थ्रू।
देखिए भाषा का मुद्दा बहुत गंभीर है। अब एक तरफ तो यह है कि मैं संचार का शिक्षक हूं और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जो सामने वाले को समझ में आ जाए। अगर सामने वाले को समझ में नहीं आई आपकी लिखी गई बोली गई भाषा तो वो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। इसलिए सरल भाषा होनी चाहिए। हम समाचारों में पढ़ाते हैं कि भी बहुत सरल भाषा में लिखना चाहिए, बातचीत की भाषा में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बोलना चाहिए, तो ये बहुत आवश्यकता है। परंतु एक गंभीर विषय जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी में अंग्रेजी शब्दों का मिलावट बहुत अधिक संख्या में हो रही है। जैसे मैं रायपुर यूनिवर्सिटी में कुलपति था तो अखबार हिंदी का अखबार लिखता था, विश्वविद्यालय के वीसी ने यह कहा या वाइस चांसलर ने यह कहा, कुलपति नहीं लिखते थे। आप मुझे बताइए कुलपति कितना अच्छा शब्द है, छोटा शब्द है, हिंदी का शब्द है, क्यों नहीं यूज करें उसको? हमारे को कुछ अखबारों ने, इंदौर के भी कुछ अखबार हैं, उन्होंने जो खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है ना, मैं तो ये कहता था कई मंचों पर कि बहुत सारे लोग जो मीडिया से जुड़े हैं वो भाषा को भ्रष्ट कर रहे हैं, भाषा को भ्रष्ट कर रहे हैं, भाषा को बिगाड़ रहे हैं, भाषा को। एक जमाने में हमारे यहां एक अखबार था, क्योंकि अब नाम नहीं लेंगे, लोगों को हिंदी सीखना हो तो उस अखबार को पढ़ते थे, अंग्रेजी सीखना हो तो एक अखबार को पढ़ते थे कि कैसे सीखी जाए। वो जमाना था। और आजकल तो अब बात ही ऐसी है कि कुछ उसमें बिंदु लगा जाए कि आधा ना लिखा जाए, ये समझ लोगों में नहीं है। अर्थी और अर्थी में फर्क ही नहीं मालूम है, अर्थी और अर्थी। हिंदी में बहुत बहुत सारी हमारे पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कुछ भी लिख देता, उसमें जब ब्रेकिंग होती है भाषा गलत, उसका मतलब कुछ हो रहा है, इस तरह की भाषा का उपयोग हो रहा है। भाषा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और पत्रकारिता के प्रशिक्षण में सबसे पहली क्लास भाषा पर होना चाहिए। भाषा चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी हो, हम जब हमारे विद्यार्थी को संपादक महोदय के पास भेजते हैं कुछ काम करने के लिए और उसको एक कागज प्रूफ रीडिंग का दे दिया जाए और उसको छोटी मात्रा बड़ी मात्रा नहीं आती है तो कैसे पत्रकारिता करेगा। इसलिए भाषा में सुधार, भाषा में गुणवत्ता, भाषा का अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो प्रोनंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। सा और शा में फर्क ही नहीं करते मीडिया के लोग, बहुत सारे चैनल में आप देखिए क्या बोलते हैं, भगवान ही मालिक है। तो भाषा एक गंभीर मुद्दा है। इस पर जब हमारे हिंदी में कुछ अच्छे शब्द हैं तो उसका प्रयोग करना चाहिए। क्या वीसी लिखने से अखबार का भाषा का उन्नयन हो जाएगा? अब जैसे रेल शब्द है, हमने एडॉप्ट कर लिया हिंदी में, भैया हमको रेल शब्द हिंदी में शामिल हो गया है, हम अच्छे से यूज करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में बहुत अच्छे हैं, उनका प्रयोग भी करना चाहिए। और पुराने जो अखबार थे वो भाषा पर बहुत ध्यान रखते थे, तो क्या वो अखबार नहीं पढ़ते थे लोग? संपादकीय में थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा का उपयोग होता था, लोग कहते थे कि संपादकीय पूरा पढ़ लिया, समझ में नहीं आया, ऊपर से निकल गया, क्योंकि संपादक महोदय उसमें ऐसी भाषा का उपयोग करते थे जो थोड़ा आम आदमी उसको, क्योंकि समाचार तो सब लोग पढ़ते हैं, एक ठेला चलाने वाला भी पढ़ता है, एक चाय की दुकान चलाने वाला भी पढ़ता है, और एक विद्वान वकील प्रोफेसर डॉक्टर भी अखबार पढ़ता है। तो समाचार तो सबको समझ में आना चाहिए, पर आजकल संपादकीय में भी सरल भाषा हो गई है, बहुत परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, उस बदलाव को हमें स्वीकार करना होगा।
अब आपकी तरफ से कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो आप प्रोफेसर साहब से प्रश्न पूछ सकते हैं। जी माइक अवेलेबल करा दीजिए। अच्छा
मेरा आपसे निवेदन है, अब दो दिन से मीडिया के बारे में बहुत अच्छे विचार चलते आए, क्या पत्रकारों को फोर्थ पिलर बोलते हैं, मिनिस्टर से लेकर सभी लोग, जैसा जुडिशियल एग्जीक्यूटिव वगैरह है, क्या इसको उस तरह का कोई मान्यता है, या पत्रकारों की दिशा भूल करने के लिए जैसा कि खेत में हल चलाते वक्त बैल को राजा राजा बोलते हैं उसी तरह फोर्थ पिलर बोलते हैं, क्या इनको मान्यता है? जब इनको मान्यता ही नहीं, इन पर कंट्रोल कौन करेगा? बगैर माने एक सामान्य व्यक्ति को जो बोलने का लिखने का हक है उससे ज्यादा किसी पत्रकार को हक नहीं। तो इसको फोर्थ पिलर बोलना या तो दिशा भूल करना है या पत्रकारों को खुश करने के लिए कहते हैं।
बहुत ही आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। वास्तव में हमारे संविधान ने तीन जो हमारे स्तंभ है उनकी तो उनका प्रावधान किया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, परंतु जो खबर पालिका है, खबर पालिका के संबंध में संविधान ने कुछ नहीं कहा है। और आपका कहना सही है कि कहीं भी भारत में किसी भी कानून में, किसी संविधान में या अन्य जगह उसका उल्लेख नहीं है। परंतु फोर्थ पिलर, अब ये दूसरी जगह से कंसेप्ट आया है हमारे यहाँ की, चतुर्थ स्तंभ वाला जो कंसेप्ट हमारे यहाँ था, मैं ऐसा मानना, मैं आपको बताऊं कि मैं लॉ का प्रोफेसर भी रहा हूं, मैं लॉ डिपार्टमेंट का डायरेक्टर भी रहा हूं, वो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने हर आर्टिकल को कई बार पढ़ा है, जितना भी है। मैं हमेशा नेताओं के यहां भी मैं कहा करता था कि भई आप ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से उसकी एक फोटोकॉपी अपने ऑफिस में लगाया करो, और रोज जब काम पे निकलो तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पढ़ा करो, तो आप समाज हित में, लोक हित में, पर्यावरण हित में बहुत सारे काम करेंगे। किसी को पता नहीं, आप पूछ के देख लीजिए किसी विधायक से, सांसद से, कि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो आपका कहना सही है कि हम इस भ्रम में हैं कि हम चौथा स्तंभ हैं, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि ना उल्लेख होते हुए भी हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, और हम समाज को एक दिशा दे रहे हैं। हमने भले प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से शासन पर, राजनेताओं पर एक तरह का नियंत्रण रहता है। अगर वो गलत काम करेगा, दूसरे दिन पहले पेज पर छपेगा, दूसरे दिन सीधे रास्ते पर जाएगा। तो ये जो काम हम कर रहे हैं समाज के विकास का, जो सामाजिक सरोकारों का, आजकल देखिए ये बहुत सारी चीजें आ रही है, अब जुडिशरी है और विधायिका है, अभी बहुत विवाद चल रहा है, उपराष्ट्रपति ने ये कह दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, एक कहता है जुडिशियल एक्टिविज्म है, बहुत सारी चीजें हैं। पर ऐसा प्रावधान संविधान में होना चाहिए, मेरा ऐसा मत है, लॉ के एक शिक्षक के नाते होना चाहिए कि मीडिया के संबंध में, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय ये बात चर्चा में आई थी, आंबेडकर जी मानने को भी तैयार थे, कुछ लोगों ने विरोध किया।
भाई जी, समय की थोड़ी कमी है, ये भाई सब का भी क्वेश्चन ले लेते हैं फिर खत्म करें।
हेलो हेलो, हाँ मैं सर आपकी बात से कुछ इत्तफाक करते हुए मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मेरा कोई सवाल नहीं है। मैं 83 से जर्नलिज्म में जब आया, आज मुझे 40 प्लस इस क्षेत्र में काम करते हो गया, और मैंने दिलीप पटगांवकर जी से मैं अपनी बात आपको बताना चाहता हूँ। मैं जब स्वतंत्र भारत में था तो राजनाथ सिंह सूर्य जी थे संपादक हमारे, ठाकुर प्रसाद सिंह जी संपादक थे, जो सलाका पुरुष माने जाते थे उस समय। फिर मैं नवभारत टाइम्स से गया, उस समय एसपी सिंह जी थे जिन्होंने फिर आज तक शुरू किया, मैंने उनके साथ भी काम किया, उनकी भी कुछ ओपिनियन थी। फिर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में गया तो मेरे रेजिडेंट एडिटर अंबिकानंद सहाय जी थे, उधर दिलीप पटगांवकर जी थे टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली। दिलीप आपकी उस बात से मैं उसको को रिलेट कर रहा हूँ। दिलीप पटगांवकर जी ने, आप सबको मैं बता दूं क्यों रिजाइन किया, शायद कम लोगों को पता होगा। उस समय समीर जैन, विनीत जैन नए नए मालिक हुए थे, चार्ज लिया था डालमिया से इंदू जैन ने, इंदू जैन से उन्होंने, तो ये दिलीप पटगांवकर जी का मानना था कि एडिटोरियल एक अलग हमारी आइडेंटिटी है, ऐड से हमारा कोई मतलब नहीं है, और कोई जो पत्रकार होता था उस समय ऐड की बात कर ले तो वो निकाल देते थे। लेकिन समय बदला, जो आपने सोशल मीडिया की बात कही, समय बदला, मालिकों ने प्रेशर बनाया, एमबीए करके लोग जनरल मैनेजर हुए, उन्होंने इसे प्रोडक्ट कहा। फर्स्ट टाइम मुझे अच्छी तरह याद है कि 86-87 की मैं बात बता रहा हूँ, 88।
भाई जी थोड़ा शॉर्ट में,
बस दो मिनट में, मैं जानकारी ये आप ही समझिए, मैं कीमती इतनी चीज बता रहा हूँ जो शायद आपको शायद पता होगा सर, बाकियों को शायद उतना ना पता हो। तो दिलीप पटगांवकर जी ने इसी बात पर रिजाइन दिया कि अखबार को अगर प्रोडक्ट बना दिया जाएगा तो फिर मेरे जैसों की, या जो लिखने वाले हैं, कलमकार हैं, उनकी आइडेंटिटी कहां रह जाएगी? फिर तो वो सड़क पे जैसे अपना सामान बेचता है, कोई टूथब्रश बेचता है, पेस्ट बेचता है, वैसी हमारी स्थिति हो गई। तो मैं ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकता। अब हम आज की स्थिति जो आपकी बात कि जब तक ये सोशल मीडिया आज हावी जो है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा प्रिंट मीडिया कुछ कमजोर हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चक्कर में, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पैसे या अर्थतंत्र जो हावी हुआ। इन मालिकों ने एक प्रयास चला था मनमोहन सिंह जी के जमाने में, मुझे याद है, शायद आपको भी याद होगा, कि ये जो जितने मालिकान हैं इनसे बाकी बिजनेस बंद कराया जाए, शुद्ध रूप से ये पत्रकारिता का काम करें जिससे उनके ऊपर वो प्रेशर सरकार का न रहे। आज हम नक्सस हो गया है, कहाँ काम कर पाएंगे? सोशल मीडिया ने तो उसको भरा है।
भाई जब वहाँ थोड़ा अगले सत्र के लिए
जब
देरी हो रही
खाली हुआ तो वो भरा।
बहन आप अगले सत्र में भाई साहब से पूछिएगा अपना क्वेश्चन, ठीक है? अभी हम इसको खत्म करना चाहेंगे।
इस पे आप कुछ कह सके? तो मैं बस इतना ही कहना कि जो चीजें
इस सत्र के बाद आप सबके क्वेश्चन एक बार ही भाई साहब को फिर बुला लेंगे और सभी पूछ लीजिएगा।
चीजें वहां से समझनी है हम।
मैडम शॉर्ट में थोड़ा सा
सीधा सवाल करें।
हाँ, ओम शांति। मेरा नाम भारती जनानी है और मैं कलकत्ता से हूँ, प्रभात खबर से पत्रकार हूँ मैं। मुझे भी लगभग 20 साल हो गए। सर मेरा प्रश्न है कि जैसे मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला गया है, आपने पॉजिटिव जर्नलिज्म की बात की कि कुछ जो चैनल हैं पॉजिटिव स्टोरीज दिखाते हैं। मेरा सवाल है कि पॉलिटिकल खबरों के अलावा या क्राइम की खबरों के अलावा अन्य खबरों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है? सर जैसे मैं शिक्षा की बीट पर बहुत सालों से काम कर रही हूँ, मैं स्कूल कॉलेज की खबरें, बच्चों की खबरें, यंगस्टर्स की खबरें, उनका कोई अचीवमेंट है उनकी खबरें, मेरा एक पेज भी निकलता है प्रभात खबर में। तो मैं मेरा ये सवाल है सर कि प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बच्चों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड, सामाजिक विकास से रिलेटेड खबरों को ज्यादा तवज्जो क्यों नहीं दी जाती है? सर एक चीज मैं और बोलूंगी, अभी थोड़े दिन पहले एक एसिड सर्वाइवर्स के ऊपर एक पैनल हुआ था। एसिड सर्वाइवर्स जो महिलाएं होती हैं जिनको कंपनसेशन नहीं मिलता है या जिनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो अखबार ऐसे मुद्दों को, बच्चों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता क्यों नहीं देता है या कैसे दी जानी चाहिए? क्या ऐसा रूल होना चाहिए? या जैसे आपने सर मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की, तो एक पॉजिटिव बदलाव के लिए सर क्या किया जाना चाहिए, ये मेरा सवाल है। थैंक यू।
देखिए इस विषय पे हम बात कर चुके हैं कि आपराधिक रिपोर्टिंग और आपराधिक खबरों को प्राथमिकता देना और राजनेताओं को, राजनीति को प्राथमिकता देना, ये अखबार ऐसा मानते हैं कि इससे ब्रेकिंग, इससे टीआरपी बढ़ेगी, इससे न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन बढ़ेगा। पर आपका बोलना सही है कि शिक्षा हो, समाज में विकास हो, युवा का विषय हो, ग्रामीण विकास की बात हो, इन विषयों को भी मीडिया को लेना चाहिए और इसको पाठक, दर्शक, श्रोता सुनना, पढ़ना, लिखना सब चाहेंगे। ये बदलाव आप लोग ही ला सकते हैं। आप जो काम करते हैं वो अपनी लेखनी के माध्यम से अपने संपादक को, अपने मालिक को कन्विंस करा करके ऐसी खबरों को स्थान दिलाना शुरू करेंगे तो एक ये अच्छी शुरुआत होगी। आपका प्रयास ही इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकता है।
थोड़ी ऑफ मार्केटिंग ये है, थोड़ी ऑफ मार्केटिंग की गंजे
अभी सर, नहीं नहीं अभी आप सुनिए, अभी आप सुनिए, अभी ये ट्री ब्रेक हो गया है, बाहर आपके लिए चाय की व्यवस्था है, उसके बाद हमारे ज्ञान सरोवर के वरिष्ठ भाई भ्राता सूरज भाई जी आप सभी को थोड़ा सा राजयोग के बारे में बताएंगे, ठीक है? और आप टीवी चैनल्स पर भी आते हैं, समाधान प्रोग्राम से बहुत पॉपुलर हैं, तो उसके बाद आप फिर भ्राता जी के सत्र के बाद थोड़ा सा पूछिएगा, ठीक है? ओम शांति।